हरे कृष्णा। आज हम लोग अध्याय एक शुरू करेंगे भगवद गीता का। यथारूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। मतलब बहुत से लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, और भगवद गीता पर विश्वास रखते हैं। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आस्तिक मतलब ये नहीं जो भगवान पर विश्वास रखे। जनरली इसका अर्थ हम यही समझते हैं, आस्तिक का अर्थ है जो भगवान के वचन, भगवान के निर्देश, भगवद्गीता और वेदों के ऊपर विश्वास रखे। तो उसी प्रकार से भगवद्गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है। जो लोग भगवान के उपदेशों पर विश्वास करते हैं वो लोग उसको पढ़ते हैं। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद्गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको मैं जरूर समझाऊंगा। और अब हमारे लेक्चर्स थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि अब हम एक श्लोक को पूरा पढ़ेंगे तो एक पेज भी हम पूरा पढ़ सकते हैं। प्रायः मैं भूमिका में थोड़ा थोड़ा समझा रहा था, अब गहराई में जाने का प्रयास करूंगा जितना मेरे पास शक्ति है। देखिए, शास्त्र को समझने की दो पद्धति है, एक है अभिधा वृत्ति और दूसरी है गौण वृत्ति। अभिधा वृत्ति का अर्थ होता है जैसा शास्त्र में लिखा है, अर्थ स्पष्ट है और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरा होता है गौण वृत्ति। गौण वृत्ति मतलब अर्थ स्पष्ट नहीं है और इस कारण से हम इनडायरेक्ट मीनिंग लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी को बोलते हैं कृपया मुझे पानी ला के दीजिए, मुझे प्यास लगी है, तो अर्थ बहुत स्पष्ट है। अब इसमें हमें कोई इनडायरेक्ट मीनिंग लेने की जरूरत नहीं है कि प्यास का अर्थ क्या है, पानी का अर्थ क्या है, मैं का अर्थ क्या है या मुझको का अर्थ क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम क्लियर है। लेकिन जैसे बोला जाए कि महात्मा जी का जो आश्रम है वो गंगा जी में है, तो महात्मा जी का आश्रम गंगा जी में है, इसका अर्थ आश्रम गंगा जी में नहीं है, गंगा जी के तट पे या गंगा जी के पास में है। तो यहाँ पे क्योंकि जो सीधा अर्थ है वो मतलब नहीं समझ, उसे क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम गौण अर्थ लेंगे या इनडायरेक्ट मीनिंग लेंगे। भगवद गीता इस अर्थ से नहीं लिखी गई है, इस उद्देश्य से नहीं लिखी गई है कि हमें गौण वृत्ति अप्लाई करनी पड़े। भगवान स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर से क्लियरली बोल रहे हैं और जैसा भगवान बोल रहे हैं अगर वैसा ही हम स्वीकार कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। अदरवाइज भगवद गीता में अगर हम अपनी धारणा के अनुसार कुछ विवेचना करने लगते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है। जैसे मैं बोलूं कि अगर मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, और व्यक्ति कोई दूध लाए, पेट्रोल ले आए, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उस कार्य को, उस वाक्य को समझने का कोई फायदा नहीं है, समझ ही नहीं पाया व्यक्ति। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें एक भक्त के संग में सहायता से संविश्रण करना चाहिए। प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य नहीं होता तो हम बस इस श्लोक को पढ़ के आगे निकल जाते, बहुत होता तो हम याद कर लेते, लेकिन प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कैसे भगवद गीता को समझना चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। बहुत सुंदर बात। भगवद गीता भगवान ने सबसे पहले सूर्य भगवान को दी, सूर्यदेव को दी, सूर्यदेव ने अपने बेटे को दी, फिर अपने बेटे ने उनके इक्ष्वाकु को दी, उसके बाद क्षमा कीजिएगा मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु को दी, इक्ष्वाकु ने अपने बेटे को दी। इन सभी के संग एक बहुत बढ़िया बात थी कि इन्होंने कोई स्वार्थ प्रेरक, अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए भगवद गीता का अध्ययन नहीं किया। भगवान को जानने के लिए, भगवान से अपने संबंध को जानने के लिए भगवद गीता का उपदेश को सुना और समझा, और एक भक्त के या तो भगवान से जैसे सूर्यदेव ने सुना था या फिर उनके शिष्य, उनके एक शुद्ध भक्त से सुना, उनके मार्गदर्शन में भगवद गीता को समझा और इस कारण से उनको वही लाभ प्राप्त हुआ जो सूर्य देव को भगवान श्री कृष्ण से लाभ प्राप्त हुआ था, और वो लाभ था आत्म साक्षात्कार का, पूर्ण आत्म साक्षात्कार का, कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ सब, और भगवान के धाम जाने की सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो सारे शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? सिंपल, हम अपने संबंध को भगवान से जाने। तो अगर भगवद गीता को हम सही तरह से समझते हैं, शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में समझते हैं, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, तो बहुत मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। यानी जब भगवान बोल रहे हैं तो पहली बात तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए पूर्ण है। दूसरा, इसको जानने के बाद कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा और कुछ जानना आवश्यक नहीं रहेगा, इसलिए पूर्ण विज्ञान है। आप समझ पा रहे हैं पूर्णता? पूर्ण एक पूर्णता इस मामले में है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है। और दूसरा, भगवान ने संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जिसके द्वारा हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं, ये इसमें बताया है। जैसे कि भगवान बोलते हैं, भगवान सातवें अध्याय बोलते हैं, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्षाम अशिष्यतः यज्ञात्व नेह भूयो अन्य ज्ञातम अशिष्यते। इदम मतलब इस ज्ञान को, इस और इस विज्ञान को जो मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको अगर तुम जान लेते हो फिर तुम्हें कुछ जानने के योग्य नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर कोई है, अगर एकमात्र जो बोलने वाला वह है भगवान श्री कृष्ण, और किसी के पास शक्ति नहीं कि मैं तुमको बता रहा हूं, अब इसके बाद तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। भगवान धर्म की स्थापना केवल असुरों को मार के ही नहीं करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो, एक मिनट रुक जाइएगा। तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान आज से मात्र 5000 साल पहले आए और उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान को प्रस्तुत किया, जबकि ये ज्ञान लुप्त हो गया था अपने ओरिजिनल स्वरूप में। और ये भगवान की स्पेशल करुणा है। और मैं बता रहा था कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट केवल अपराधियों को मारती ही नहीं है, अपराधियों के मारने का कार्य तो करती है, साथ साथ धर्म की शिक्षा देती। धर्म से मेरा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की, या क्या कार्य अच्छे होते हैं सरकार के अनुसार, और कार्य किन कार्यों को अपराध बोला जाता है, ये सब भी बताया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि अच्छे नागरिक उन नियमों का पालन कर सकें और उससे गवर्नमेंट का के पोषण का लाभ उठा सकें। तो भगवान भी इसी प्रकार से यहाँ पे आते हैं, तो केवल दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि दुष्टों को तो उनके एजेंट्स हैं, उनकी शक्तियाँ मार सकती हैं, मारती ही हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे आते हैं और भगवान अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं जब वो अपने बारे में बोलते हैं। जीवात्मा के लिए भगवान के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी वो भगवान के प्रति आकृष्ट होगा। और भगवान जानते हैं कि अगर वो अपने बारे में ना बताएं तो हमारे पास कोई तरीका नहीं उनको समझ पाने का। जब स्वयं बता रहे हैं फिर भी हम नहीं समझ पा रहे, तो अगर भगवान कभी नहीं आए, कभी नहीं बताएं अपने बारे में, स्वयं आकर ना बताएं, तो हम कैसे जान सकते हैं? इसीलिए भगवान स्वयं आकर यहाँ बता रहे हैं, स्वयं उपस्थित होकर के गीता को बता रहे हैं। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था, इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। क्या इसमें ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये धृतराष्ट्र की मन की स्थिति को दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है और चार पांच भूखे लोग रेस्टोरेंट में गए, तो जब वो लोग वहां पे होंगे तो क्या ये प्रश्न कह सकते संगत लगता है कि हम बोलें कि वो भूखे लोग खाना खाने की इच्छा से जब रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने क्या किया? नेचुरल सी बात है कि वहां पे जाकर उन्होंने खाना खाया, वहां जाकर वो कीर्तन नहीं करेंगे। तो अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द में विचार करें। पहली बात, प्रभुपाद कुरुक्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, इसे कहते हैं स्वार्थ परक चेतना, सॉरी क्षमा कीजिएगा, व्याख्या। क्योंकि व्यक्ति ये बताना चाह रहा है कि गीता मात्र एक फिलोसफिकल दार्शनिक प्रेजेंटेशन है, कुछ शब्द मुझे हिंदी में नहीं आ रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। तो इस कारण से वो इन शब्दों की व्याख्या अपने मनगढ़ंत तरीके से करते हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि कुरुक्षेत्र कोई वास्तविक स्थान नहीं है, हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है जिसमें युद्ध चल रहा है, और वो जो हमारी पांच इंद्रियां हैं वही पांच पांडव हैं। ये व्याख्या उनकी मनगढ़ंत तरीके से है, भगवद्गीता में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। भगवान भी बहुत सारी एनालॉजीज यानी कि उदाहरण देते हैं, कहीं ऐसा उदाहरण नहीं दे रहे कि कुरुक्षेत्र तुम्हारा शरीर है और पांच इंद्रिय तुम्हारे पांच पांडव हैं, तुम पांच पांडव जो है वो पांच इंद्रियों के समान हो। सब अपने मन से लोग सोच लेते हैं, क्योंकि भगवान से वो द्वेष करते हैं, भगवान की बातों को घुमा फिरा के बताना चाहते हैं। अब कुरुक्षेत्र को प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वेदों में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र में जो यज्ञ किया जाता है इसके द्वारा व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे आप उदाहरण लीजिए कि जब सूरज उगता है तो लिली नाम का फ्लावर होता है वो बुझ जाता है, और कमल जो होता है वो उग जाता है, खिल जाता है। तो यानी कि सूर्य के प्रभाव से एक प्रकार का फूल जो है वो कुमला जाता है, और एक प्रकार का जो फूल है वो कह सकते हैं प्रकार वो खिल जाता है। तो वो जान रहे हैं कि इनके पुत्र, किनके पुत्र? धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव हैं, ये अधर्म की तरफ हैं, और ये क्योंकि अधर्म का कार्य धर्म क्षेत्र में कर रहे हैं तो इनका उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी, संभावना कम है। और क्योंकि पांडु पुत्र धर्म के पक्ष में है और वो धर्म क्षेत्र में है, इसलिए अधिक संभावना है कि वो जीतेंगे। अब कितने आश्चर्य की बात है, देखिए कि पांडवों की खाली 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी, फिर भी धृतराष्ट्र को डर था। एक और अद्भुत बात है, धृतराष्ट्र बार बार भगवान श्री कृष्ण को कहते थे कि मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यहां हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली वो युद्ध चाहते थे। वो अपने बेटे के प्रति बहुत आसक्त थे, दुर्योधन के प्रति, और उसकी गलतियों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया करते थे। वो चाहते थे युद्ध हो, बस खाली ऊपर से बोलते थे कि युद्ध नहीं चाहता, मैं तो युद्ध नहीं चाहता। इसीलिए युद्ध के बारे में बहुत उनको जिज्ञासा थी, और उनको ये भी डर था कि ऐसा तो नहीं है कि धर्म क्षेत्र का जो प्रभाव है इस कारण से हमारे जो अधर्मी लड़के हैं दुर्योधन है उनका मन बदल गया हो और उनने समझौता कर लिया हो। तो इस प्रकार की संभावना के कारण जो उनके हृदय में हो रही थी, ये प्रश्न वो संजय जी से कर रहे हैं। और संजय जी कैसे युद्ध स्थल का दर्शन कर पा रहे थे, आगे भी वो लास्ट में गीता के श्लोक में बोलते हैं, व्यासा प्रसादात, भगवान व्यासदेव के कृपा से, उनके शिष्य थे उनकी कृपा से वो सारा जो टेलीकास्ट था वो उनके हृदय में हो रहा था और वो धृतराष्ट्र को वो बता रहे थे। इवन धृतराष्ट्र को व्यासदेव जी ने बोला था कि अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसको आपको दिखा सकता हूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं देखूंगा नहीं, उतनी शक्ति मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं खाली सुनूंगा, आपके संजय से सुनूंगा। तो इस प्रकार से सुन रहे थे और ये प्रश्न उन्होंने किया। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। बहुत सुंदर बात है, कुरुवंश के उत्तराधिकारी तो कुरु ही होने चाहिए ना। तो कितनी अद्भुत बात है कि ये पांडवों को, जो कि पांडु के पुत्र थे और पांडु कुरु थे, उनको ये कौरव मानते ही नहीं थे धृतराष्ट्र। उनको यही लगता था कि मेरा जो पद था, मेरा जो सिंहासन है वो ये मेरा अधिकार है, इसको पांडवों को नहीं मिलना चाहिए, या फिर मेरे बेटे दुर्योधन के लिए ये है, इनको नहीं मिलना चाहिए। इसलिए बोल रहे मामकः पांडवश्चैव। देखिए एक राजा जो सच्चा राजा है उसको अपनी प्रजा इवन कीड़े मकौड़ों को भी ऐसे प्रेम करना चाहिए जैसे उनका खुद का बच्चा हो। तो इनका कर्तव्य था एक राजा के रूप में राष्ट्र का कि पांडवों से प्रेम करते, ऐसे प्रेम करते जैसे अपने बच्चा होता है प्रजा होने के नाते। और अब इस पर सोचिए कि उनके खास भाई का लड़का है, बच्चे हैं, फिर कितना प्रेम करना चाहिए। फिर भी क्योंकि उनकी आसक्ति थी और वह धर्म के पक्ष में थे, इस कारण से वो पांडवों के प्रति ये द्वेष विद्वेष भावना वैर भावना रख रहे थे कि ये तो दूसरे के हैं, इनको तो मार जाना चाहिए ऐसे करके। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। या आप और चीज देख सकते हैं, जो व्यक्ति के धर्म की तरफ होता है वो हमेशा उसके हृदय में भय बना रहता है। जो भी व्यक्ति गलत करता है उसके हृदय में भय बना रहता है। अधर्म का आश्रय लेकर के हम कभी भी निर्भय नहीं हो सकते हैं। एक शास्त्र में श्लोक आता है, धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करते हैं। बहुत सारी चीजों से रक्षा करते हैं लेकिन भय से भी रक्षा करते हैं। जब व्यक्ति दान पुण्य करता है, भक्ति करता है, तो नेचुरली उसका भय आगे वो क्या होगा, उसकी गति क्या होगी, नेचुरली उससे वो निर्भय हो जाता है। और जैसे हम पाप करते हैं तो हमारे हृदय में भय आ जाता है, अरे इसकी वजह से कहीं मुझे नरक ना जाना पड़े, इसकी वजह से मेरी कोई दुर्गति ना हो जाए। तो हम देखते हैं कि इस जगत में भी अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, पुण्य कार्यों में लगते हैं, तो व्यक्ति निर्भयता को प्राप्त होता है। धर्म इस प्रकार से हमें रक्षा करता है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो यहाँ देखिए आप समझिए, ऐसा प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र और धर्म कुरुक्षेत्र कोई स्थान नहीं है, ये चीज आप थोड़ा समझिएगा। प्रभुपाद जी खाली ये बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र क्योंकि धर्म क्षेत्र है और क्षेत्र मतलब होता है खेत, तो यहाँ खाली एक उपमा दी जा रही है कि जिस प्रकार से एक खेत में अच्छे पेड़ रखे जाते हैं एक फार्मर के द्वारा, एक किसान के द्वारा, और जो घास पतवार है उसको खींच लिया जाता है, उसी प्रकार से धर्म के पिता धर्म का क्षेत्र, धर्म का खेत है, खेती कौन कर रहे हैं, भगवान जो धर्म के पिता हैं कृष्ण, तो वो खेती अगर कर रहे हैं तो इस खेत और वो खेत है कुरुक्षेत्र, तो उसमें जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं जो कि मतलब खरपतवार जैसे हैं उसको वो खाड़ फेंकेंगे भगवत इच्छा से, अपनी इच्छा से, और युधिष्ठिर और पांडवों जैसे अच्छे पौधों को जो फल देने वाले हैं, दूसरों को सुख देने वाले हैं, उनको वो प्रिजर्व करेंगे। नेचुरली हर माली ऐसे करता है, आप रोजी माली को करता हुआ देख सकते हो। तो ये सत्य है कि ये सारा युद्ध जो है वो भगवत इच्छा से हुआ, भगवान के प्लान से हुआ, और इसका प्लान क्या था, भगवान का प्लान यही था कि धर्म की स्थापना हो और धर्म का समूल नाश हो, और उसके ही कारण ऐसा हुआ था। और इस डर इस बात को धृतराष्ट्र जानते थे, डरते थे, और इसी कारण से इस प्रश्न को कर रहे हैं। हरे कृष्णा।